તારીખ 5/3/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 866 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 8
પત્રાંક 866 ચાલતા હૈ परिणमन होने का कारण क्या है, कौन विषय चलता है, कौन सा विषय चलता है। इंद्रज्ञानी लोग का परिणमन कैसे होता है, किस कारण से होता है। इंद्रज्ञानी का परिणमन माने क्या, इंद्रज्ञानी ने जो आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन है, मोक्षता का यथार्थ प्रकार से जब प्रारंभ होता है तब उदासीनता आए बिना है नहीं। जैसे कि कल विषय चला था कि जिसको परिभ्रमण की चिंतना वेदना तड़पन आती है उनको उदासीनता आई बिना रहेगी ही। एक कारण तो वो है। दूसरा एक कारण वो है कि जिनको ज्ञानी पुरुष के प्रति भक्ति के परिणाम आएगा, निष्काम भक्ति के परिणाम आएगा, उनको भी उदासीनता आए बिना रहेगी नहीं। और ये दोनों प्रकार दर्शनों का अनुभव टूटने के लिए मोक्ष को प्रारंभ की दशा में होता है। यहां से दर्शनों का अनुभव कम होने की यथार्थ शुरुआत होती है। इसके बाद जो शेष आता है वो पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य वाला आता है। गुरुदेव सिंह ने अपने अनुभव से एक सूत्र दिया है। सभी ज्ञानियों ने ये बात तो कही है लेकिन गुरुदेव ने इस बात को सूत्र सिद्धांत के रूप में कही कह दी है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। किसकी, मोक्ष की भूमिका की। ज्ञान दशा की शुरुआत की बात नहीं है, मोक्ष दशा की शुरुआत की बात है। पूर्ण शुद्धि का ध्येय लक्ष्य जिसको होता है उसको ही मोक्षता का वास्तविक प्रारंभ होता है। और उसी वक्त उदासीनता की डिग्री और बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर के स्तर में उदासीनता बढ़ती है और ऐसे बढ़ते हुए क्रम को जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं कि उदासीनता का क्रम सेवन करना। और वही आगे जाके अध्यात्म दशा के जन्म होने का कारण बनता है। कोई कितनी भी भक्ति पूजा करता हो, कोई कितना व्रत उपवास करता हो, कोई कितना भी शास्त्र पढ़ता हो, परंतु जो उदय में उदासीनता में नहीं आया और ये यथार्थ रूप से जो नहीं आया उनके सभी प्रकार के साधन सफल होने का कोई अवसर नहीं होता। रस कहां लेता है, क्या प्रश्न है? मैं प्रश्न दोहराऊंगा कि उदय में उदासीन ऐसी बात क्यों आ रही है, उसका मतलब क्या है। इस बात को खोलने की उनका प्रश्न है कि हर संसारी जीव, प्रत्येक संसारी जीव रस कहाँ लेता है? अपने उदर में लेता है, अपने भाव में लेता है, और कहाँ लेता है? दूसरे के उदय के साथ हमें कौन सा लेना देना है? सबको अपने अपने उदय के विषय में ही रस आता है। देख लीजिए, तलाश कर लीजिए। जब पड़ोसी से ही लेना देना नहीं है तो फिर और तो बात ही कहा, सब दूर है। ऐसे भाई भाई अलग हो जाते हैं कि नहीं हमारे यहां, इस संपत्ति का बंटवारा करके अपने गुजरत वजिया रहे कैसे हम कैसे हमारे उसका शब्द है इसका हिंदी में भी कुछ होगा हमारा वजिया रहे चले तो मैंने जो ज्वाइंट संपत्ति थी संयुक्त संपत्ति थी वो अलग अलग कर लिया। फिर कोई माल को बिजनेस में बहुत लाभ होता है तो रस आता है क्या? रस तो क्या आएगा, शायद जलन भी हो सकती है, ईर्ष्या भी हो सकती है, और किसी को नुकसान हो गया, दिवाला निकाल दिया, दूसरे लोग कहेंगे मैं आपके भाई हूं तो आपको कुछ उस विषय में हिस्सा देना पड़ेगा। उनको देखो हम तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, आपको मालूम हो नहीं हम क्या करें, लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी जाने, हम तो किसी के कचरे में नहीं पड़ते। तो किसी का हो गया, क्या हो गया बताए तो नहीं बताए, अपने रूपों में सबको रस आता है। जब अलगपना भिन्नपना हो गया तो उसमें रस नहीं आएगा। और द्रव्यानुभव का मुख्य सिद्धांत यही है कि तुम तुम्हारा द्रव्य ही जगत के सभी सचेत अचेत द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। जब सर्वथा भिन्न है तो तुझे रस आने का सवाल क्यों होता है? जितने भी उदय प्रसंग है वो भिन्न ही है, तेरा कोई समझ नहीं है इसे। तो शरीर से ही संबंध नहीं है तो आगे की बात तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है। उदय प्रसंग और उदय भाव दोनों लेना है। द्रव कर्म तो किसको दिखता नहीं, कर्म के परमाणु सर्गमस्त को दिखने में नहीं आता, लेकिन अपने उदय भाव का वो अनुभव करता है, और वो उदय भाव जो उनका फल वो कर्म जिसको बोलते हैं उसके साथ सीधा संबंध जुड़ता है उसका। तो जो संयोग वियोग हो कर्म फल से उसमें उदासीन रहना, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ देना है। क्योंकि जो भिन्न है इसमें इष्ट भी क्या और अनिष्ट भी क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो है सो है, पर देव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं भिन्न ज्ञानमय आत्मा हूं और उदय जितने भी है और उदय भाव जितने भी है वो मेरे से भिन्न है। सर्वथा गुरु हूं, मेरा थोड़ा भी संबंध इससे ये भिन्नता से निरसता आए बिना है ही नहीं, और भिन्नता पूर्वक जो निरसता आती है वो सही निरसता है, वो यथार्थ निरसता है। क्यों? क्योंकि ये निरसता होने का आधार वस्तु का स्वरूप ज्ञान है, सृष्टि स्वरूप का ज्ञान पूर्वक जो निरस्ता आती है वो निरस्ता यथार्थ आती है, और ओक संज्ञा से निरस्ता आती है समझे बिना वो निरस्ता उदासीनता क्षणिक होती है, फिर परिस्थिति लोग की वो हो जाती है। जैसे किसी ने ओम संज्ञा से वैराग्य प्राप्त होकर के दीक्षा धारण कर ली, सर्वसंग परित्याग कर दिया, सभी ऋषियों का त्याग कर दिया, इस भाव तक उसने मनोबल से दृढ़ता से ऐसे जीवन आयु पर्यंत जी लिया, कितना फायदा होगा कि उसके फल दिवस हो जाएगा, क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति और अशुभ परिणाम उतने नहीं रहेंगे, शुभ परिणाम के रस तीव्र में हुआ हो देवलोक में जाएगा। ऐसे देवलोक में जाने वाला जी अपना असंग तत्व की दृष्टि के अभाव में देवलोक के वैभव देवी वैभव के संयोग में जा पड़ेगा, और वहां संयोगी दृष्टि अनादि की जो थी वो चालू रही तो संयोग में लपेट हो जाएगा। ज्ञानी भी देवलोक में जाते हैं और अज्ञानी भी दूर जाते हैं, लेकिन ज्ञानी निरक्त होते हैं, देव पर्याय को प्राप्त होने पर देवो अंतरंग से विरक्त होते हैं, क्योंकि वो असंग तत्व की दृष्टि में रहे हुए हैं। मैं सर्व से सर्वथा भिन्न एक केवल असंग तत्व हूं, निर्लेप स्वभावी हूं, मेरे से किसी का कोई लेना देना है नहीं, ये सब उदय का खेल है। क्या बात है, सब उदय का खेल है, अपने आप होता है, मुझे कोई रस नहीं, उसमें कोई रस आता नहीं है, क्यों रस आता नहीं है कि न मुझसे न मुझे उससे सुख मिलता है, नहीं इसके कारण से मुझे दुख होता है, ये सुख का कारण है तो दुख का कारण है, न लाभ का कारण है, न नुकसान का कारण है, न शांति का कारण है, न अशांति का, इसलिए रस नहीं आता सही रूप से। हम भी हम समय निंदा करते हैं तो ये द्रव्यांग क्यों परिणमता है कि ऐसी यथार्थ उदासीनता आने से दर्शन में का अनुभाग घटता है, इसलिए द्रव्यांग का परिणाम होता है। और मत पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से मैं विषय लिया था कि दर्शन कम होने का यथार्थ रूप से दर्शन कम होने का दो कारण है, एक तो कारण है परिभ्रमण की वेदना आदि से लेकर के पूर्णता का लक्ष्य बद्ध करके निष्पक्ष होकर के अपने दोषों का अवलोकन करके तो दर्शन का अनुभव घटता है, इसलिए एक सुगम उपाय वो है कि अगर महापुरुष का ये प्रत्यक्ष योग मिल जाए, उनके संग से उनकी पहचान हो जाए, और पहचान होने से उनके प्रति बहुमान भक्ति उसके चर जिसको कहते हैं भक्ति भाव की भाषा में चरण कमल की उपासना
और वो भी बलवान रूप से चरण कमल की उपासना। चरण कमल की उपासना क्या चीज होती है श्री राम जी? क्या चीज होती है कि जो ज्ञानी आज्ञा करते हैं, मनुष्य के हित के लिए जो आज्ञा करते हैं कि भाई तेरे लिए तो यही योग्य है, तुम्हारा हित के लिए, तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए तुम्हारी जो योग्यता है, जो भूमिका है, इस भूमिका में तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा तुम्हारे परिणाम ऐसा होना चाहिए, उनको ऊपर उठाते हैं। मोक्ष को जहां भी खड़ा है वहां से ऊपर उठाते हैं, तो कम होता है कि जब उसी बात को आज्ञा को रूप आज्ञा के रूप में लेकर के शिव धार्य करता है, तब वो महापुरुष के वचनों को गिरने नहीं देता। इस आज्ञा को आज्ञा पर पैर रख करके चलता नहीं, उपयोग से, सावधानी से और पूरी ताकत से, पूरा उद्यम से, पुरुषार्थ से उस आज्ञा को अंगीकार करता है। अंगीकार करता है माने उसका अमलीकरण करता है। सिर्फ बातें ही बातें नहीं है इसमें, अंगीकरण का स्टेज आता है इसमें, तो उसी को कहते हैं आचरण। इस भूमिका का वो यथार्थ आचरण है, वो सही आचरण है, जो उसको मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का कारण बनता है। मोक्ष मार्ग में आना एक कार्य है और वो कार्य की भी कोई वजह होती है, इसका कारण होता है, वो कारण में एक महापुरुष के चरण कमल की उपासना का जो बल होता है। और अमृतकरण तो तभी होता है कि जब बलवान रूप से, पुरुषार्थ से, ताकत से प्रयोग होता है और अमल होता है। दीपचंद जी काशीवास में जिसने अनुभव प्रकाश आदि ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने अंगीकरण की बात लिया है। हम पढ़े सुने विचार करें उतना ही नहीं, जो बात हमको हमारी भूमिका में लागू होती है उसका अमलीकरण भी हमें करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। इसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष के, महत पुरुष के चरण कमल की उपासना। और वे दर्शन में कम होने का और दुनिया में परिणाम होने का एक बहुत श्रेष्ठ कारण है और सुगम भी है, सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है, दोनों है। इस तरह से दुनिया परिणाम करता है। अब आगे कहते हैं कि जैसे जैसे संयम वर्धमान होता है, ऐसे तैसे यथार्थ परिणाम होता है। फिर आगे दर्शन गुरु का अभाव होकर के उसी बाणी पुलिस समिदम की आती है। जिनवाणी की स्तुति में मई माँ है अगम जिनादम की जो स्तुति है अपनी जिनवाणी की, उसने बात महत्व लिया है कि जब ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, जब सूर्य ज्ञान हुआ, सूर्य दर्शन हुआ, तो वो सम्यक दृष्टि बैठे नहीं होता। इसलिए बैठे एक बात क्या है कि जैसे चक्रवर्ती को अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा होता है पुण्य के वशात, तो वो बैठा नहीं रहता। इसकी आयुधशाला का जो अफसर होता है सुप्रिंटेंडेंट, वो आकर के उनको बधाई देता है कि महाराज आपके पुण्य प्रभाव से हमारी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, धन्य हुआ आपका पुण्य को, उनकी बधाई देता है। तो बैठा नहीं रहता, कब क्या है चक्र तो आ गया, अब छकन जीतेंगे, कभी ऐसी बात नहीं होती है। वो सीधा ही हुक्म छोड़ता है, तैयारी करो छह खंड जीतने की तैयारी करो, सब लाल लश्कर को सजा धजा के आगे करो, मैं चलता हूं साथ में। ऐसे सम्यक दर्शन भी एक धर्म चक्र है, वो आते ही साधक की रुचि शब्दम की बढ़ जाती है, रुचि वाड़ी पूरी शब्दम की, इनमें से ऐसा होता है क्योंकि उनको रस तो और जगह तो है ही नहीं, और पूर्णता का लक्ष्य तो मनुष्य की भूमिका में बैठा है, पूर्ण होना है, और अभी अभी पूर्ण शीघ्रता से होना है, त्वरा से होना है। तो जैसे जैसे ज्ञान दशा में इस प्रकार का परमार्थ संयम बढ़ता है, स्वतही व्यवहार संयम भी प्रकट होता रहता है, वैसे वैसे द्रव्यानुयोग मैंने अध्यात्म दशा साधक की उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सूर्य की वृद्धि का कारण समय दर्शन का निर्मलत्व है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये स्वयं वर्धमान होता है, कि इसका मूल कारण तो सूर्य दर्शन से जो निर्मलपन आया है, यही कारण से स्वयं भी वर्धमान होता है। मेरे चारित्र का कारण भी सूर्य दर्शन है, चारित्र का कारण क्या, मोक्ष का कारण भी सूर्यदर्शन है। धन सूर्यो धर्मो चरित्र खलु धर्मो, चारित्र है वो तो वास्तविक धर्म है, खरा धर्म है, सच्चा धर्म है, और इसका मूल है सूर्यदर्शन। उसका कारण तो सूर्यदर्शन को हर जगह लिया ही है, ये कुंकुल आचार्य के सूत्र है। सभी चारित्र में कोई ऐसा लेते हैं कि प्रतिज्ञा लेकर के बाल्य क्रिया का पालन कर लिया तो नाम दे दिया चारित्र, ऐसा नहीं है। वृत्ति आत्मा में स्थिर होती है, उद्योग आत्मा में स्थिर होता है, और जो शोक स्थिरता बढ़ जाती है वो शोक स्थिरता का दूसरा नाम चारित्र है। वो आत्मनिर्भरता है, उसमें आत्मा का आचरण होता है, स्वरूपाचरण होता है, उसको चरण कहते हैं। जैसे केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान की जाति एक है, वो स्थान अलग अलग है, चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक ज्ञान होता है और केवल ज्ञान तीन गुण स्थान में होता है। जाति गुणों की एक है, उसको सम्यक जाति कहने में आती है। जाति शक्ति गति और सत्ता एक परिणाम से चार पहलू होते हैं, तो बनासीदास जी ने लिया है अपने परमात्मा चिंता में। तो सत्ता तो सुखे का प्रमाण देती है। ज्ञान की सत्ता तो सुखे का प्रमाण देती है और जाति दो प्रकार की होती है, सम्यक या मिथ्या। ज्ञान की जाति दो प्रकार की होती है, सम्यक या मिथ्या। चतुर्थ स्थान से लेकर के आगे के सभी स्थानों काल में सम्यक जाति के ज्ञान होता है, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे मोटे सुख ज्ञान हो, उसकी जाति एक है। शक्ति स्वतर प्रकाशक होती है और गति दो प्रकार की होती है, अल्पज्ञत्व और सर्वज्ञत्व। कम जाने या पूरा जाने या अधूरा जाने, ऐसे ही चारित्र में भी ऐसा ही है कि चारित्र की जो जाति होती है वो भी सम्यक और मिथ्या दो प्रकार की होती है। चतुर्थ गुणस्थान से बारहवा गुणस्थान तक चारित्र बोला जाता है। तेरहवें गुणस्थान में साधक दशा नहीं रहे तो वहां से चारित्र का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि चारित्र बारहवें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र पूर्ण हो जाता है। जाति स्वरूपाचरण के चतुर्थ साध लेकर के सम्यक जाति का आचरण होता है, उसको सम्यक चारित्र बोलने में आता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कब होता है कि जब उपयोग के स्वरूप में लीनता होती है तब होता है। वैचारिक भूमिका में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता है मनुष्य को। निर्विकल्प सिद्धोपयोग के काल में जो उपयोग स्वरूपस्थ होता है, स्वरूप में लीन करना होता है, एकाग्र होता है, आचरण करता है, जम जाता है, स्थिरता को प्राप्त होता है, ये सब चारित्र के उपनाम है, चारित्र के ही दूसरे नाम है। ऐसे स्वरूप आचरण चतुर्थ गुणस्थान में पैदा होता है, तभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग चालू हुआ, तभी धर्म हुआ। क्योंकि धर्म होता है वो दो होता है, और तीसरा नहीं होता है, ऐसा कभी बनता नहीं है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया चतुर्थ गुणस्थान में, लेकिन धर्म अधूरा नहीं होता। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता और अविरुद्धता साथ ही साथ रहते हैं हमेशा, और तभी उसको धर्म कहने में आता है और धर्म के धनी को धर्मात्मा कहने में आता है। उपयोग की लीनता होती है वो आचरण में, आत्मा का आत्मा में आचरण हुआ। क्या हुआ कि आत्मा का आत्मा में आचरण हुआ, वो आचरण को प्रति ऊपर के भूमि स्थानों में वर्धमान होता है और उसका असर बाह्य परिणामों पर उतना आता है कि कई प्रकार के विभाव परिणाम बुद्धिपूर्वक होते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते, उत्पन्न ही नहीं होते। उसी को व्रत ऐसी सुनना दी गई है। ऐसे संयम की वृद्धि का कारण, मेरे स्व स्थिरता का भी कारण सम्यक दर्शन का निर्मल करना है, और उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है। वो द्रव्यानुयोग मूल में अंगीकार किया परिमूल करके, ये इसका कारण है। सम्यक दर्शन कब हुआ कि मुमुक्षु की भूमिका में द्रव्यानुयोग अंगीकार किया, अंगीकरण किया, तो उनको दर्शनों का अभाव होकर के दर्शन ज्ञान इच्छा प्राप्त हुई और संयम आदि वर्धमान होने लगे। सामान्य रूप से दिव्यांगों की योग्यता प्राप्त होना दुर्लभ है। दिव्यांगों की प्राप्ति होना ये विशेष बात है, सामान्य बात नहीं है। बहुत से धर्म के क्षेत्र में आने वाले और दिव्यांगों के शास्त्र के अभ्यास करने वाले बहुत से लोगों में से कुछ एक जीव को दिव्यांगों की प्राप्ति होती है, इसलिए ये दुर्लभ माना गया है। असंभव है, अशक्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे दिव्यांगों प्राप्त करने वाले कुछ एक विरल जीव होते हैं। से दिव्यांगों की योग्यता प्राप्त होना दुर्लभ है। आत्माराम परिणामी परम वितराग दृष्टिवंत परम असूर ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है, दिव्यांगों के मुख्य अधिकारी कौन? दिव्यांगों के मुख्य अधिकारी तो मुनिराज होते हैं, वो छठे सातवें स्थान में विराजमान होते हैं, वो दिव्यांगों के मुख्य पात्र हैं। नीचे के स्थान वाले गौण पात्र हैं, मुख्य नहीं लिए। तो कैसे उनके आत्माराम परिणामी कैसे होते हैं मुनिराज? वो आत्मा में मस्त रहते हैं। जिसको देह की दशा का भान नहीं रहता, देह मात्र जिसको परिग्रह है और पंचेंद्रिय के फैलाव रहित जिसका उपयोग है, कैसा उपयोग है? कि पंचेंद्रिय में उसका उपयोग फैलाता नहीं है, एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए तो हम अपनी दशा में रह सकते हैं। सहज रूप से बिना बोझा उस स्वरूप में मस्त होते हैं, तभी रह सकते हैं। भूल जाते हैं हमारे पड़ोस में देह जैसा कोई पड़ोसी है या नहीं है, वो भूल जाते हैं। उसका स्मरण करना पड़ता है उनको कभी कभी, अरे देवी है, स्मरण आता है कभी, ज्ञान ध्यान में छूटता है तो मालूम पड़ता है कि आहार लेना कई तो विकल्प होता है, एक आहार लें फिर ज्ञान ध्यान में जम जाए, तो उस वक्त थोड़ा लगता है कि देवी है, चलो उसको भी थोड़ा किराया दे दो। हमारे डॉक्टर नंदू जी टैक्सी भरा होते कि नहीं, जिस टैक्सी में सफर करते हैं उनको किराया देना पड़ता कि नहीं? तो हमारे आत्मा इस देह में सफर करती है कि नहीं करती है? मंदिर जाना, घर जाना, बाजार जाना, उधर जाना, इधर जाना, तो उसको भी किराया दे देना, थोड़ा बहुत किराया दे देना, इससे ज्यादा कोई लगाव नहीं है। उस तरह से वो आत्माराम परिणामी होते हैं, क्षण क्षण में शुभोपयोग इसका होता है, एक दिन में हजारों बार से चैतन्य बोला छुट्टा भिन्न पड़ जाता है, बार बार चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध बोले गुरुदेव तो क्या बोलते हैं, चलते फिरते सिद्ध है, वैसे सिद्ध परमात्मा सारी अनंत एक ही क्षेत्र में स्थिर रह जाते हैं। जहां से मोक्ष होता है द्रव्य मोक्ष होता है नहीं, तो भी नुकसान की बात सब श्रेणी में ऊपर विराजमान हो जाते हैं एक ही समय में, सादी अनंत काल वहीं विराजमान रह जाते हैं। वो सिद्ध अलग है और ये नग्न दिगंबर दशा में भाव लेंगे सूत जो चलते फिरते हैं उनको सिद्ध के रूप में ज्ञानी देखते हैं। ज्ञानी की नजर में चलते फिरते सिद्ध है, इतना बहुमान आता है ज्ञानियों को। मुनियों का बहुमान कितना आता है, इतना आता है कि जैसे वो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा हो, मोक्ष तत्व है। पंचम साल ने कहा कभी कहा पीछे भाव लेंगे मुनिराज तो मोक्ष तत्व है, तत्व दृष्टि से उसको मोक्ष तत्व कहा है। क्यों, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिबंध मन विचर उदय आदि निमित लोभ जो विचरते हैं बिना अपेक्षा, कभी उधर कभी इधर, वैसे ही जैसा उदय होता है कर्म की निर्जरा होने के कारण से उदय आता है। उदय क्यों आता है, निर्जरा के कारण से आता है और उसका विचरना हो जाता है। क्षेत्र के साथ कोई लगाव नहीं, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई लगाव नहीं होता, ये तो मोक्ष की भूमिका से सब इसका बीज बोया जाता है कि इस क्षेत्र में हम हैं या किसी क्षेत्र में हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा गांव है ये हमारा घर है, ये बात दरमियान योग परिणाम निकलने वाले मोक्ष को नहीं आते, कहीं भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। विराज होते हैं वो तो आत्मारम परिणामी होते हैं, परम विकराग दृष्टिवंत होते हैं। कैसे होते हैं, परम विकराग दृष्टिवंत होते हैं, परम विकरागता का दृष्टिकोण है। केवल ज्ञान लेने के लिए दिन रात पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, करना नहीं पड़ता सैव हुआ ही करता है। जुड़ते हैं शक्ति सातवें स्थान में, जुड़ा जुड़ता है वैसे जुड़ते हैं, लेकिन एक अवसर ऐसा आएगा कि वो सातवें से ऊपर जाएगा, छठे में आएंगे फिर तो अंतर्मोद का काम है कि वो ज्ञान लेने का ज्यादा देर नहीं लगती। जब श्रेणी लग गई आठवें स्थान से, आठ नौ दस ग्यारह बारह ग्यारह में आता नहीं, सीधा ही तेरहवें स्थान में अंतर्मोद में विराजमान होकर के अरविंद पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी परम वितरागता वहां है, तेरहवें स्थान में क्या है, बारहवें स्थान से परम वितरागता है। उनका दृष्टिवंत है, उन्हें तीन पुरुषार्थी है इसके। ऐसे महात्मा परम असंग होते हैं, किसी के संग में वो रहते नहीं, मुनियों को लौकिक गुरुओं का संग नहीं रुचता, इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं। अगर संग रुचता तो परिवार को जुड़े तो नहीं थे, परिवार में कोई बुरे लोग थोड़े ही होते हैं, सब सेवा करने वाले होते हैं, अनुकूल रहने वाले होते हैं, क्यों छोड़े। तो लौकिक जन्मों के संग में रहना ही है तो परिवार में रहना में क्या आपत्ति है, और चक्रवर्ती जैसे दीक्षा लेते होंगे तो कहें उनको कम वाहनों को उतारे दिखाते होंगे कि महाराज आप तो ठहर जाइए ना, आप हमारे से बात भी मत करिए, मैं आपको मैन पसंद नहीं हो तो घास की कुटिया बना देंगे, हाँ लेकिन हमारे नजर के सामने तो रहिए, आपका दर्शन तो उनको होता रहेगा, आप हमारे सामने भी मत देखिए लेकिन हमको तो देखने दीजिए, हाँ दूर मत जाइए, हमारी नजर से दूर मत जाइए। इतनी प्रियता होती है सारे परिवार में, तुम्हें लेकर के आएंगे तो सब उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ देते हैं, देखिए मेरा राज थोड़ा बहुत था, वैसे तो दुर्घटना में मैं खड़ा था लेकिन सारे तो मौका थोड़ा राग था छूट गया है, अब रागी छूट गया है तो मैं आप लोगों के संग में कैसे रह सकता हूं, नाक में कफ आता है लेकिन मैल आता है उसको रखना चाहे तो बढ़ जाता हूं और रखना चाहे तो रह सकता मेरा लगेगा लौकिक जनों के संग में रहना राज को बोझा 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 लगता है, वो रह नहीं सकते, वो तो केवल ज्ञान लेने के लिए ज्ञान ज्ञान की मुष्टि में जंगल में पड़े रहते हैं, ऐसे महात्मा दिव्यांग लोग के मुख्य पात्र है, उन्होंने दिव्यांग लोग का प्रगट परिणाम जगत को दिखा दिया है, देखिए इसका दीदार केवल साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि भिन्नता क्या चीज होती है, इस तरह से बलियानों के विषय में बलियान की भक्ति करके श्रीमद जी ने बलियानों का एक संक्षिप्त प्रकरण एक छोटा सा पत्र में लिख लिया है, बाद में तो पंचाशी काय की बात थोड़ी चली है, किसी को भेजा है और जिसको पत्र लिखा है उनको लिखा है कि ये जो हमारे वचन हैं वो शिथिल करने योग्य नहीं है, ज्यादा क्या लिखे, समाधि का रहस्य यही है और सर्वदुख से मुक्त होने का अन्य उपाय भी यही है, ऐसा कह करके यह पत्र यहाँ समाप्त होता है, तुम्हारा समय भी समाप्त होता है।